الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: إن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم لأهله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عورتوں کا طبقہ قدیم زمانے سے مظلوم چلا آ رہا، خاص طور پر زمانۂ جاہلیت میں ان کے ساتھ جس نوع کی زیادتیاں، ناانصافیاں اور ظلم ہوا کرتے تھے اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ان کو زندگی کے قابل بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. کسی کے یہاں اگر لڑکی پیدا ہوتی تو وہ زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے بہت بڑی آگ سمجھتی. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ. ان میں سے جب کسی کو اطلاع دی جاتی ہے، خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی، ذل وجہ مسود، سن کر اس کا چہرہ کالا ہوتا ہے، وہ کظیم اور وہ اپنے غیظ اور غضب کو گویا دبائے ہوئے ہیں. ایمسکہ علی ہونی، यतवारा मिनल कौम मिन सुए मा बुशे नबी, उसको जो इत्तला दी गई है यानी लड़की की पैदाइश की, उसकी वजह से वो अपने आप को लोगों से छुपाए फिरता, शर्म आती उसकी, मेरे घर लड़की पैदा हुई। दिल में वो सोचता है क्या जिल्लत और रुसवाई के साथ उसको मैं जिंदा रहने दूं या फिर मट्टी के अंदर दबा दूं। ये हाल था उन लोगों का लड़कियों के मामले में और औरतों के मामले में, किसी किस्म का कोई हक उनको हासिल नहीं था। अगर किसी लड़की के बाप का इंतकाल हो गया तो विरासत की हकदार नहीं समझी जाती थी। उनके यहाँ एक दस्तूर था कि जो घोड़े पर सवार हो, हाथ में नेजा ले और दुश्मन का मुकाबला करे, वही वारिस बन सकता है, माल पर उसी का हक। लड़कियों को विरासत में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। मतलब यह है कि समाज में, सोसाइटी में, माशरे में उनकी कोई हैसियत नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जरिए पूरी इंसानियत को जिंदगी गुजारने का बाइज्जत तरीका अता फरमाया। उसमें औरतों के लिए भी बेशुमार हुकूक शरीयत की तरफ से मुतय्यन किए गए, बहैसियत एक फर्द इंसानी के उनको बराबर का दर्जा दिया गया। अलबत्ता उनकी नौ की जो कुछ खसूसियात हैं या उनकी सिंफी कमजोरियां हैं, उनके पेश नजर बाद अहकाम के अंदर फर्क किया गया। वो तो हर जगह किया जाता है, बच्चे के लिए कुछ और हुक्म होता है, बड़े के लिए और होता है, इस तरह यहाँ पर बाहर इस्लाम ने आकर बाकायदा औरतों के लिए हुकूक मुतय्यन किए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत बुखारी शरीफ कि हम औरतों को कोई हैसियत नहीं देते। मैंने कुरैश के यहाँ, अरब के यहाँ औरतों का कोई मकाम नहीं, उनको कोई इज्जत हासिल नहीं थी। एक मरतबा में अपनी किसी अपने किसी मामले में सोच रहा था, तो मामला पेश आया था, उस सिलसिले में क्या इकदाम करना चाहिए, क्या आगे इसके लिए फैसला करना चाहिए। मैं सोच रहा था, तो मेरी बीवी को भी मालूम था कि ये सूरत हाल है। उसने मुझे बतौर मशवरे के कहा कि आप ऐसा कर लें। तो अगर उसने ये बात कही तो मैंने कहा अच्छा, मेरे मामले में दखल दे। उस पर उसने कहा कि हे उमर, आप तो, मैंने भलाई की बात की, आप जिस मामले में उलझे हुए हैं उसके अंदर आपके लिए जिसमें खैर थी, मेरे नजदीक भलाई थी, वो मैंने आपको बतलाई, उस पर आप नाराज होते। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने हुकूक के मामले में बराबर की गुफ्तगु करती है, बातचीत करती है। बारा ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज़वाज मुतहरात उम्मातुल मोमिनीन को नसीहत करने की गरज से गए, अलावा क्या लंबा चौड़ा। बहरहाल मैं तो ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, उस वक्त औरतों की समाज में, माशरे में कोई हैसियत नहीं थी। इस्लाम ने आकर उनको बाकायदा हुकूक दिए और हर चीज में अल्लाह तआला ने उनको वह ऐसा मर्तबा मकाम दिया जिससे उनकी इज्जत का पता चलता। और कुरान में भी उनके साथ उसने सुलूक की बड़ी ताकीद फरमाई। बारी ताला का इरशाद अभी आपके सामने मैंने पढ़ा, वाशिरूहुन्न बिल मारूफ, इन औरतों के साथ भलाई के साथ पेश आओ, अच्छी तरह जिंदगी गुजारो, अच्छा सलूक करो, उसने खुल्क से उसने सलूक से पेश आओ। हुक्म दे रहे हैं बारी का इनके साथ भलाई से पेश आओ। आगे फरमाते हैं फैन करे तुम बात मरतबा, आदमी को अपनी बीवी की किसी बात पर नाराजगी होती है तो उस पर उसकी वजह से वो नारवा सलूक करता है, बद अखलाकी से पेश आता है, उसको बिल्कुल कोने पर रख देता है, उसके हुकूक की अदायगी का एहतमाम नहीं करता, तो उस पर बारी ताला तंबीह फरमाते हैं फैन करी तुमने शयन, अगर तुम उनको किसी वजह से नापसंद समझते हो तो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद समझो और अल्लाह ताला ने उसमें तुम्हारे लिए बहुत भलाई रखी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है ला यफ़रिक मोमिन मोमिनत इन करेहा मिनहा खुल्कन रज़िया मिनहा आखर, कोई ईमान वाला अपनी ईमान वाली बीवी से जो है बिल्कुल नाराज न हो, उससे अपने दिल के अंदर अदावत और बुग्ज न रखे। क्यों? अगर उसकी कोई बात नापसंद है तो दूसरी बात पसंद नहीं आए। कोई भी आदमी दुनिया में ऐसा नहीं जिसके 100% सारी चीजें ठीक हो, कोई बात ठीक होती है कोई उसके अंदर काबिल एतराज होती है। हर जगह वहां ये उसूल देखा जाता है कि भाई उसकी खूबियों को देखकर उसकी कमजोरियों से सरफ नजर किया जाता है, चश्मपोशी की जाती है, दर नजर किया जाता है। शरीयत भी हमें ये तालीम देती है तो औरतों के मामले में भी यही उसूल मद्देनजर रखना चाहिए। उनकी कुछ फितरी कमजोरियां हैं उसकी वजह से उनके साथ बदसलूकी का मामला न किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है खैरुकुम खैरुकुम लियालिही व अना खैरुकुम लियालिही, तुम में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करता और मैं अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करता हूँ। या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसने अखलाक का सर्टिफिकेट उसी आदमी को दिया जिसका मामला अपने घर वालों के साथ बेहतर थी। सारी दुनिया तारीफ करती है उनके अखलाक की खूबियों की लेकिन घर वालों को शिकायत है तो ये इस्लाम की नजर में काबिल एतमाद नहीं। आपके घर वाले अगर आपसे राजी हैं کام لیتے تھے کہ ہمارا آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، ایک مرتبہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، آپ ایک مرتبہ اپنی ایک بیوی کے گھر میں تھے تو آپ کی دوسری زوجہ مطہرہ نے دوسری بیوی نے کوئی اچھا کھانا پکوا کر آپ کے لیے ایک پیالے میں خادمہ کے ساتھ بھیجا۔ تمنا ہوتی ہے کوئی اچھی چیز گھر میں پکے تو وہ مجھ سے پہلے میرا شوہر کھاوے، اس ان کی باری کا دن نہیں تھا تو انہوں نے وہ کھانا جن کی باری کا دن تھا، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے وہاں خادمہ کے ساتھ کھانا بھیجا۔ جب وہ خادمہ کھانا لے کر وہاں گئی تو جس بیوی کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے ان کو آئی حیرت، عورتوں میں یہ مادہ بہت خاص کر کے اپنے شوہر کے وہاں کہ بھئی میرے شوہر کی محبت میں دوسرا کوئی شریک ہونا नहीं चाहिए।
तो वो जो खाने में खाना लेकर वो
आत्मा और वो प्याला नीचे गिरा, खाना भी ये हो गया और वो प्याले के भी टुकड़े। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आप हदीस में है, आप प्याले के उन टुकड़ों को जमा फरमा और खाना भी आपने जो गिरा था, मुंतशिर हो गया था, आपने सब ठीक कर लिया और उस खादिमा को रोक लिया और जिनके घर में ये मामला पेश आया था वहां से अच्छा प्याला देकर उसको रवाना। क्या सब्र का आप बदला, बड़े से बड़ा तहम्मुल वाला सब्र वाला आदमी भी इस मौके पर ऐसा मुजाहरा कर सकता है? कोई भी होगा पहला काम ये करेगा कि मारेगा यहाँ नबी। और कुछ आप फरमाने जा रहे हैं तुम्हारी माँ को गैरत आ गई, यानी वो आप उनकी तरफ से माजरत पेश कर रहे हैं। कमाल की बात तो ये, उनको डांट डपट करने के बजाय उनकी मिजाज में ये गुस्सा क्यों आया, तेज क्यों आया, तो वो उनकी तरफ से माजरत का अंदाज इख्तियार करते हुए उनको गैरत आई, इस गैरत में उन्होंने ये कर डाला, माजूर करार दे रहे। सजा देने की बात तो दूर की रही, आपने खुद ही उनका उजर अपनी तरफ से बयान किया और दरबदर से कहा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था उम्महातुल मोमिनीन के साथ। बुखारी शरीफ के अंदर वाकया मौजूद है, एक मरतबा हजरात उम्महातुल मोमिनीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा करके अपने मुतालबे अपनी डिमांड रखी, कुछ खर्चा पानी बढ़ाओ, हमारा खर्चा जो आप खर्चे के तौर पर उनको जो दिया करते थे उसमें इजाफे और ज्यादती का मुतालबा करने के लिए सब उम्मादू पूरा उनका डेप्यूटेशन होया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर के सब बैठी और अपनी डिमांड रखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। ये हमारा मुताब है, तो आपका सिलसिला भी शुरू हुआ था तो क्या हमारे जो हमें जो कुछ मिलता है खर्चे के तौर पर उसमें कुछ ज्यादती होनी चाहिए। और ये गुफ्तगू हो रही थी उसमें उनकी आवाजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाजों से आवाज से बुलंद है। ये वाकया भी बुखारी शरीफ में मौजूद है। अभी तो ये बातें चल ही रही थी, इसी दौरान इत्तेफाक की बात हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने उनको थोड़ा पता कि अंदर क्या हो रहा, वो बाहर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए आए और बाहर से उन्होंने इजाजत के लिए अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं आ सकता हूँ? आप इजाजत के लिए उन्होंने सलाम किया, इजाजत चाहिए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने की आवाज जो उन्होंने सबने सुना, उनकी हैबत बहुत थी। वो जब चली गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को और वो अंदर दाखिल हुए। अंदर जब दाखिल हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे, हजरत उमर को तो मालूम नहीं कि मुस्कुरा क्यों रहे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह अज़ाकल्लाह सिन्नक, मायूस है अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला आपको और हंसा। ये भी आदाब बताता है, शरीयत ने हमें अदब बताया कि आदमी हंसता हो ना तो उसको हंसने की वजह आप पूछें तो पहले तो आप उसको दुआ दें कि अल्लाह आपको और हंसा, जरा बताइए तो सही क्यों हंस रहे हैं आप। यहाँ भी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं, या रसूलल्लाह अज़ाकल्लाह सिन्नक, मायूस हैं अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला आपको और हंसा है, आप क्यों हंस रहे हैं? तो जब उन्होंने सवाल किया तो नबी के निशान से पर्दे की तरफ, पर्दे के पीछे हजरत इमाम, मुझे इन पर ताज्जुब होता है कि अभी तो आपके आने से पहले तो बुलंद आवाज से मेरे साथ बातें कर रही थी जोर जोर से, और अभी आपकी आवाज सुनी इजाजत मांगने की तो बात कर। ने ये सुना, वो तो पर्दे के पीछे थी, उधर रुख करके हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने अजीब जुमला कहा, याद वाद अनफुसीन, याद वाद अनफुसीन अतहब ननी वला तहब न रसूल अल्लाह ये अपनी जान की दुश्मन हजरत आपको हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कश्मीर अल्लाह फरमाते हैं कि हजरत उम्मतुल मोमिनीन को अजवाद मुतहरात को इन अल्फाज से हजरत उमर ही मुखातब कर सकते हैं, किसी और को हक नहीं पहुंचता। तो ये अपनी जान की दुश्मन मुझसे डरती हो और अल्लाह के रसूल से नहीं डरती, यानी डरना तो चाहिए था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और आपके सामने इस तरह बुलंद आवाज से बातें नहीं करनी चाहिए थी। उमर आप तो बड़े खड़ विचार सख्त आदमी, तो उस पर जब उन्होंने अंदर से ये जवाब दिया, जाहिर है ये चीज हजरत उमर के लिए उनकी तरफ से जो कही गई नहीं कहनी चाहिए थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर की दिलजोई के लिए फरमाया, वो एक हकीकत का इजहार किया, उमर तुम तो वो आदमी हो कि जब किसी गली में से गुजरते हो तो शैतान भी अपना रास्ता बदल देता है, इनकी क्या हैसियत है, ये तो आपसे जरूर डरेगी। महाराज मैं तो ये अर्ज करना चाहता था कि यहाँ इनकी तरफ से पेश आने वाले सुलूक को नबी के इंसान से चुनाचे इनके लिए तालबे हुजूर को अच्छे नहीं लगे, और हुजूर ने नाराज होकर के कसम खाई, एक महीने तक मैं तुम्हें तुम्हारे पास आऊंगा नहीं, और आपका एक पाला खाना था हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का जो मकान था, नीचे तो उनका ये था, ऊपर एक पाला खाना था, तो माला जिसको कहते हैं वो हुजूर वहां तशरीफ, पूरा महीना वहां गुजारा, किसी के यहाँ गए नहीं, और उसी क़याम के दौरान अखीर में महीना पूरा हुआ, उस वक्त वो क्या तुमको अगर दुनियावी जिंदगी मतलब है सारा आओ, मैं तुमको उद्दे दिला करके रुखसत करूँ, और अगर तुमको अल्लाह उसके रसूल से ये मामला है मोहब्बत तो मेरे साथ जिंदगी गुजारना है तो यही आयतें नाज़िल हुई, अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा मुखातब किया था, पाबंद किया था, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीना भी पूरा हुआ था, कसम खाई थी आप नीचे उतरे, सबसे पहले हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जा करके उनसे आपने फरमाया, आयशा एक बात तुम्हारे सामने पेश करने जा रहा हूँ, उस सिलसिले में फैसला करने में जल्दी से काम मत लेना जब तक कि अपने माँ बाप से मशवरा न करो। तो कहते ऐसा रजी अल्लाह तआला मोहम्मद थी, अब इस आयत में इख्तियार दिया गया था, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह अंदेशा हुआ कहीं अपने तौर पर फैसला करके वो अलायदगी का फैसला ना हो, इस पर आपने तंबीह फरमाई, तो जाहिर माँ बाप से मशवरा करेंगे करेंगे तो किसी हाल में भी वो तो अलायदगी का मशवरा नहीं देंगे, इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से इख्तियार दिया गया था और वो इख्तियार उनके सामने पेश भी करना था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं चाहते थे कि यह अलायदगी इख्तियार करे। देखो इनके इन मामला के बावजूद भी हुजूर उनको अपने साथ ही रखना औरतों के हुकूक उनके हुकूक में, अब देखो असल तो जरूरत इस्लाम ने जिंदगी के जो मुख्तलिफ आदमी को जिन लोगों से वास्ता पड़ता है, पैदा होते माँ बाप से, भाई बहनों से, घर के लोगों से, शादी होने के बाद बीवी से, औलाद होने के बाद बच्चों से, पड़ोसी से, जिन जिन लोगों से आदमी को अपनी जिंदगी में वास्ता पड़ता है, उन तमाम के साथ किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, उनके क्या हुकूक हैं, उनके साथ किस तरह हमें पेश आना चाहिए, ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दिया। इसी को गैर माशरत कहते हैं कि गोया जिंदगी गुजारने का तरीका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। शादी जब आदमी करता है तो अब जाहिर है शादी के बाद एक नई हस्ती उसकी जिंदगी में आ रही है, औरत उसकी बीवी बन करके आगे औलाद भी पैदा होने वाली है, तब इस औरत के साथ क्या सलूक करना, किस तरह जिंदगी गुजारना, ये बाकायदा शरीयत ने तफसील से बताया, उनके हुकूक बताया, उनके ये हक है। और हुकूक के मामले में एक बात और भी, जैसे जैसे मियां बीवी के शौहर पर और शौहर के बीवी पर हुकूक दोनों तरफ बताया, दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे तो जिंदगी बहुत अच्छी तरह गुजरेगी। और शरीयत ने हुकूक के मामले में भी जो अंदाज इख्तियार किया, जो तरीका अपनाया, वो ये है जिसका हक है उसको नहीं कहा, जिस पर हक है उसको बताया। शौहर को यूं कहा कि तुम्हारी बीवी के तुम पर ये हक, बीवी को नहीं कहा कि तेरे शौहर पर यह, बीवी को यूं कहा कि तेरे शौहर के तेरे ऊपर यह जो जिम्मेदारियां हैं, दूसरे का हक बीवी का हक शौहर, शौहर ये शौहर की क्या हुई जिम्मेदारी और बीवी का क्या हुआ हक, इसी तरह शौहर का हक बीवी पर, ये बीवी की जिम्मेदारी है उसको अदा करना है, और यही हक बना किसका शौहर, ये जो जिसको अदा करना जिस पर जिम्मेदारी आई उसको शरीयत ने मुखातब किया और उसको बतलाया। बीवियों को यूं कहा तुम पर शौहरों के ये होते और शौहरों को यूं कहा तुम पर बीवियों के, अल्लाह ताला सीधा उनको कह रहे हैं कि तुमको ये काम करना, बीवियों को ये नहीं कहा कि तुम्हारे ये हुकूक किनके ऊपर है शौहरों को, नहीं, अल्लाह ताला ने सीधा गोया खिताब किया और सीधा ऑर्डर दिया शौहरों को कि तुम ये हक अदा करो और बीवियों को कि शौहरों को, जिनका हक है उनको नहीं, जिन पर हक है उनको शरीयत ने खिताब किया। और यही तरीका जो है जिंदगी के सलामती के साथ गुजारने का है। आज दुनिया में मामला उल्टा हो गया, सबक शरीयत ने यह दिया था, मुझे चाहिए कि मैं ये देखूं कि मेरे ऊपर किस किस का हक है, बीवी का है, औलाद का है, माँ बाप का है, भाइयों का है, पड़ोसियों का है, सब जिन जिन के हुकूक हैं मैं मालूम करूं, और मालूम करने के बाद उन हुकूक को अदा करने की कोशिश करूंगा। मेरा हक किस पर है, मेरी बीवी पर, मेरे बाप पर, मेरी माँ पर, मेरे बेटों पर, ये नहीं, मुझे ये नहीं कहा कि तुम ये मानो, मुझे तो ये कहा कि तुम पर जिसका हक है मानो, मुझे जब ये पाबंद किया मैं जब लोगों के हुकूक अदा करूंगा तो कोई झगड़ा ही नहीं। आज क्या हो गया, आज लोगों ने दूसरों का सबक पढ़ लिया, बीवी ने वो सबक पढ़ लिया जो शरीयत ने शौहर को दिया था। शरीयत ने शौहर को क्या हुक्म दिया था कि तुम्हारी बीवी के तुम पर ये हुकूक हैं जो तुम्हें अदा करने हैं, ये बीवी को नहीं कहा, किसको कहा था शौहर। अब ये सबक शौहर का था लेकिन पढ़ रही है कौन, अब लोग किताबों बीवी ढूंढे भी किताब, मेरे शौहर को मेरा क्या, मेरे शौहर को ढूंढ करके वो शौहर बता दें कि मेरा तुम पर ही। अरे भाई ये बात जो तुम कह रही हो तो शरीयत ने तुमको नहीं कही, किसको कही, शौहर को चाहिए कि वो मालूम करे कि मेरे ऊपर बीवी का क्या हक है और उसको अदा करने की कोशिश करे, और इसी तरह बीवी को चाहिए कि वो मालूम करे कि मेरे ऊपर शौहर का, शौहर शरीयत ने बीवी को कहा कि तुम पर शौहर का ही हक है,
बोया जो उसकी जिम्मेदारी थी वो उसको बतलाई नहीं। आज मामला क्या हो गया, उलट गया, इससे झगड़े ही झगड़े पैदा। अब शोहर वाला सबक था वो पढ़ लिया बीवी ने, और वो शोहर को नोटिस दे रही है कि मेरा तुम पर यह हक है, तुम अदा करो, नहीं तो मैं यूं करूंगी यूं करूंगी। शोहर ने वो सबक पढ़ लिया जो बीवी को दिया गया था, अब वो नोटिस दे रहा है बीवी को, मेरा यह हक है तुमको अदा करना। आका ने वो सबक पढ़ लिया जो गुलाम का था, आका गुलाम मेरा तो पढ़ लिया, गुलाम वो कहता है मेरा तो पढ़ लिया। अब हरेक अपने हुक्म तालबा का, मुझ पर किसका हक है और मुझे किसका हक अदा करना, ये सब बोला। नतीजा क्या हुआ, दुनिया झगड़ों का घर बन गई। शरीयत ने जो तरीका इख्तियार किया था उसमें हर एक को उसकी जिम्मेदारी बताई थी, उसकी जो जिम्मेदारी वो दूसरे का हक, ये अपनी जिम्मेदारी को समझेगा अदा करेगा तो दूसरे का हक खुद ब खुद अदा हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि बड़ी अमनोमान और इत्मीनान की जिंदगी गुजरी। शरीयत ने बहुत ज्यादा लिहाज किया। अभी जो मैंने रिवायत पेश की थी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, बड़े जलील कद्र सहाबी हैं, उनके और उनके बाप की उम्र में 13 साल का फर्क है, बाप 13 साल बड़े, बेटा 13 साल छोटे। तो वो अब्बा ने उनका निकाह करा लिया, निकाह कराने के बाद अब उन पर इबादत का बड़ा गलबा था। दिन भर रोजे रखते थे, रात भर इबादत करते थे, नमाज पढ़ते थे। कुछ दिनों के बाद इनके अब्बा ने इनकी बीवी से यानी अपनी बहू से पूछा, अब्दुल्ला कैसे आदमी, मतलब यह था कि हक अदा कर रहे हैं कि नहीं। तो उनकी बहू ने अब्दुल्ला की बीवी ने बताया, बड़े दिन भर रोजा रखते हैं, रात भर इबादत करते हैं, उनको दुनिया से कोई दिलचस्पी नहीं, तो कहना था कह दिया। अब्बा समझ गए इनकी बीवी के हक की अदायगी की तरफ तवज्जो नहीं करते, फिर समझे कि हो सकता है। कुछ दिनों के बाद फिर मालूम किया, अभी यही हाल था। तो अब्बा ने ये सारा मामला बुजुर्ग के सामने पेश कर दिया। बाद में तब ऐसा होता है, बात चीजें ऐसी होती है कि बाप इस सिलसिले में बराए रास्त बेटे से बात करना मुनासिब नहीं समझता, तो दूसरे बड़ों को बतला देता है, आपके यहाँ कोई मामला हुआ तो कारी साहब को जा करके नहीं, कारी साहब वो बुला करके नहीं बताएंगे, बनाने मोहन साहब को गया। तो ये बुजुर्ग शासन से जा करके कहा, ये है मैंने एक शरीफ घराने की लड़की के साथ उनका निकाह करा दिया, लेकिन उन पर तो इबादत का इतना गलबा है कि वो दिन भर रोजा रखते हैं, रात भर इबादत करते हैं, वह बीवी का हक अदा नहीं कर। तो दूसरे रोज खुद नबी करीम उनके घर तशरीफ ले गए, और आप जब तशरीफ ले गए उन्होंने तकिया उनके सामने पेश किया, लेकिन ने उसको इस्तेमाल नहीं करा, बीच में ही रहा और उनसे पूछा, अलग खबर अन्न का कसम नहार व तको मुल्ला, ए अब्दुल्ला मुझे क्या ये नहीं बतलाया गया कि तुम दिन भर रोजा रखते हो और रात भर इबादत करते हो। खुद तो भला यार कहते हैं, मैंने अर्ज किया, जी हाँ अल्लाह के रसूल, बिल्कुल आप तक जो इत्तला पहुंची है वो बिल्कुल दुरुस्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तफा सुम वाफ्ती कुम बनाओ, ऐसा मत करना, रोजे भी रखियो और इफ्तार भी, कुछ दिनों में रोजे कुछ नहीं रखता, और रात का कुछ वक्त इबादत भी करो और कुछ वक्त आराम भी करो। तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है, बोले न्यायालय का न्यायालय का हक्कन तुम्हारी हक का तुम पर हक है, वही नले जौजे काले का हक्कन तुम्हारी बीवी का तुम पर हक है, वही नले जौरे काले का हक्कन तुम्हारी मुलाकात के लिए आने वाले मेहमान का भी तुम पर हक है, वह हर एक का हक अदा करो। शरीयत नाम ही है हुकूक का, शरीयत ने तमाम के हुकूक बदला दिए, जरूरत है कि हम उसका एहतमाम करें। आज क्या है, इन हुकूक की अदायगी ही के मामले में
आदमी देखने में बड़ा अच्छा नेक साले नमाज का पाबंद जमात पहली सब में जमात के साथ नमाज अदा करता है तकबीर उला के साथ, लेकिन घर का हाल मालूम करेंगे तो पता चलेगा कि बीवी का हक अदा नहीं करना, माँ बाप का हक अदा नहीं करना। लेकिन ये भी मालूम होने की जरूरत है हुकूक है क्या, हुकूक है हमारे यहाँ तो ये भी जो हक नहीं है उसको हक समझा ये मेरा हक। जैसे वह शौहर यूं समझता है कि खाना पका करके दे बीवी मुझको, ये मेरा हक है, किसी किताब में आपको ये हक मिलेगा नहीं ढूंढेंगे। मैं मेरे कपड़े में निकालू तो धो करके मुझे दे, ये मेरा हक है। जिन चीजों को हमने हक समझ रखा है कहीं हदीस में कुरान में उसको हक के नाम से नहीं बताया, हक समझने में गलती है। और फिर जब बुनियादी गलती हुई तो आगे जो गलतियां होंगी क्या वो बढ़ती चली जाएगी। खाने के लिए बैठे अब जरा सा नमक कम है प्लेट उठा करके मार देंगे, भैया ये कोताही हुई बीवी की तरफ से, हक अरे उसने खाना पका करके दिया ये उसका बड़ा एहसान है, पका करके देख लो ना कैसा बनता है, और फिर किसी दो आदमियों को खिलाओ वो तुमको क्या उसके ऊपर राय देते हैं कि तुम्हारा खाना कैसा है। मेरे जरा से नमक में जब 19-20 हो गया तो पहले उठा करके मारते और खुद बना के जोगे तो पता चलेगा सौ है फिर। इसलिए इन चीजों की तरफ खास तवज्जो करने की जरूरत है और इन वजूहात से हमारे घरों में जो जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं इससे भी अपने आप को बचाने की जरूरत है। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक और सआदत दे। आमीन।